तारीख 2 मई दिन बुधवार, सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। मुंबई के पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन को उम्र कैद।
9 आरोपी है, सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केएम जोसेफ की तरक्की के मामले पर फैसला मुलतवी किया। सरकार ने कहा न्यायपालिका के सम्मान पर कोई समझौता नहीं।
रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी एंड द जजेस इज कंप्लीट एंड अनकॉम्प्रोमाइज।
दुनिया जहान में चर्चा एक छोटे से अफ्रीकी देश की, जहाँ दिलचस्प परंपराएं जारी हैं।
और ये बहुत ही अजूबा और ऐसा लगता है कि आज के सभ्यता के हिसाब से गलत है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे पॉपुलर है।
सबसे पहले विश्व समाचार। बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पत्रकार ज्योतिर्मय डी की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त छोटा राजन समेत सभी 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी मामले में हत्या के दूसरे अभियुक्त पत्रकार जिग्ना वोरा और पॉलसन जोसेफ को बरी कर दिया है। मुंबई के रहने वाले ज्योतिर्मय मिडडे नामक अखबार में बतौर वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर काम करते थे। पेपर के लिए जेडे नाम से लिखने वाले ज्योतिर्मय की मुंबई के उपनगर पवई में 11 जून 2011 को गोली मारकर हत्या दी गई थी। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में चुनाव आयोग को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। कई चरमपंथियों और कम से कम एक आत्मघाती हमलावर ने आयोग की इमारत पर धावा बोला था। हताहतों में आयोग के सदस्य और सुरक्षा कर्मियों के शामिल होने की आशंका है। चुनाव आयोग मतदाताओं को दर्ज करने का काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को आशा है कि इस साल के आखिर तक लीबिया में चुनाव हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद पहली बार यूरोपियन कमीशन ने बजट के विवरणों को तय कर दिया है। कमीशन ने 2021 से 2027 तक 6 सालों के लिए 1.5 ट्रिलियन यूरो खर्च करने की सीमा तय की है। बाहरी सीमाओं को सुरक्षित करने पर अधिक खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जां क्लॉड यूंका ने कहा, जिस बजट को हम प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें हर एक यूरो जो खर्च किया जाएगा वो बड़े परिणाम लाएगा। ये एक ऐसा बजट है जो चुनौतियों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा, जो हमारे भविष्य को आकार देगा। ये थे यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जां क्लॉड यूंका के शब्द। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को यहूदी विरोधी और होलोकोस्ट को खारिज करने वाला बताया है। नेतन्याहू अब्बास के एक भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। दरअसल अब्बास ने इस सप्ताह की शुरुआत में ये कहा था कि होलोकोस्ट में यहूदियों का मारा जाना उनके सामाजिक व्यवहार के कारण हुआ था। इस मुद्दे पर नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आकर इस टिप्पणी की निंदा करने को कहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्वीडन के एक शांति संस्थान ने कहा है कि रूस का सैन्य खर्चा 20 सालों में पहली बार पिछले साल सबसे कम रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक सैन्य खर्च का सालाना मूल्यांकन करते हुए कहा है कि रूस ने 2017 में अपनी सेना पर $66 अरब खर्च किया है। संस्थान की वरिष्ठ शोधकर्ता सिमोन वेजमैन ने कहा कि इस गिरावट की वजह रूसी अर्थव्यवस्था है। खासतौर पर 2014 से उनके साथ आर्थिक दिक्कतें हैं। रक्षा मामले के खर्चों को इससे बचाया जाता रहा है, लेकिन 2017 में अर्थव्यवस्था में और गिरावट आई, जिसका प्रभाव सेना खर्च पर भी पड़ा, जिस कारण उन्होंने इसको कम करना पड़ा। असल में उनके पास पैसे है ही नहीं। ये थे वरिष्ठ शोधकर्ता सिमोन वेजमैन के शब्द। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए हैं। वांग अपने समकक्ष री योंग हो के निमंत्रण पर उत्तर कोरिया गए हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों के दौरान चीन का कोई बड़ा नेता उत्तर कोरिया पहुंचा है। दोनों देशों के बीच बातचीत में 9 मई को जापान में दक्षिण कोरिया और चीन के नेताओं के बीच होने वाले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन मुख्य मुद्दा हो सकता है। ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया है कि एक कंप्यूटर चूक के कारण ऐसा अनुमान है कि 270 से अधिक महिलाओं की स्तन कैंसर से मौत हुई है। ऐसा मानना है कि 2009 और इस साल की शुरुआत में तकरीबन 1 लाख महिलाओं को बीमारी के लिए नियमित जांच के लिए बुलावा नहीं भेजा गया था। बीबीसी समाचार। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। मुंबई की एक अदालत ने पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन और उनके 9 अन्य सहयोगियों को उम्रकैद की सजा दी है। 2 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। ज्योतिर्मय डे खोजी पत्रकार थे और 11 दिसंबर 2010 को मुंबई के पवई इलाके में छोटा राजन गिरोह के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई। छोटा राजन का 2 साल पहले बाली से प्रत्यर्पण करके भारत उनको लाया गया था। मैंने कुछ ही देर पहले मुंबई में बीबीसी मराठी के संवाददाता मयूरेश कुन्नूर से इस बारे में और जानकारी ली।
जब ये अदालत शुरू हो गई तब इस पूरे मामले में जेडे हत्याकांड के मामले में जब 9 लोगों को दोषी करार दिया गया, इसमें सबसे अहम नाम था छोटा राजन का, जो जाने माने गैंगस्टर हैं और उनके समेत कुछ शार्पशूटर थे जिन्होंने जेडे के ऊपर गोलियां मारी थी और उनकी हत्या कर दी थी, उनके नाम भी थे। ऐसे 9 लोगों को जज ने आज दोषी करार दिया गया। इसमें ये पता चला कि छोटा राजन, ऐसा उनको लगता था कि जेडे जो है वो कुछ अहम जो इंफॉर्मेशन है वो छोटा राजन की राइवलरी गैंग जो है दाऊद, उस दाऊद की गैंग को कुछ दे रहे थे और दाऊद छोटा राजन को उस इंफॉर्मेशन की मदद से मारने के प्लान बना रहा था। जेडे उनकी मदद कर रहे थे और इसी वजह से छोटा राजन ने ये पूरी हत्या जो है वो की थी। जज ने ये कहा कि ये जो इनका उद्देश्य है, मोटिव है, वो साबित हुआ और इन 9 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। जब आज ये पूरी जो फैसला है वो सुनाया गया तब उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे प्रदीप घरात, उन्होंने जो कुछ भी बात कही वो हम सुनते हैं।
9 आरोपी है, सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है और इसमें जो पहला चार्ज है मर्डर का 302 और जो 120 कॉन्स्पिरसी का चार्ज है उसमें उनको लाइफ हो गई है। उनको 1,00,000 रुपीज़ फाइन हो गया है और अगर वो फाइन ना भरे तो उनको 3 साल की सजा है।
अदालत ने कुछ अभियुक्तों को छोड़ भी दिया, बाइज्जत बरी कर दिया है, उनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है?
कुल मिला के इस पूरे मामले में 13 जो है वो आरोपी थे, अभियुक्त थे, उसमें से एक की मौत हो गई थी, एक एब्सकॉन्डिंग है यानी फरार है और 9 लोगों को दोषी ठहराने के बाद 2 लोगों को इस मामले में निर्दोष बरी कर दिया गया। और उसमें एक बड़ा नाम यह है वो है जिग्ना वोरा का। जिग्ना वोरा मुंबई के ही एक अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग करती थी, उनका भी नाम था और उनका नाम इस जब मुंबई पुलिस तफ्तीश कर रही थी पूरे मामले की तब उनका नाम सामने आया था। उनके ऊपर आरोप ये था कि वो एक प्रोफेशनल राइवलरी थी उनके और जेडे के बीच और इसी वजह से वो भी गुस्सा थी और वो छोटा राजन के कांटेक्ट में थी, छोटा राजन को उन्होंने उकसाया। छोटा राजन ने भी कुछ यहाँ ऐसे दावे किए थे कि इन्होंने मुझे जानकारी दी और जेडे की घर के पता, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है वो जिग्ना वोरा ने छोटा राजन को दी थी और बाद में जाके ये हत्या हुई थी। हालांकि आज अदालत में ये कहा गया कि इसमें जिग्ना वोरा के ऊपर जो भी आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए और इसलिए उनको पूरा निर्दोष बरी जो है वो किया गया। वो कुछ देर तक जेल में रही और बाद में उनको बेल भी मिल गई थी लेकिन आज उनको पूरी तरह निर्दोष मुक्त कर दिया गया। एक और जोसेफ करके जो अभियुक्त थे उनके खिलाफ कोई भी जो पुरावा है वो नहीं होने की वजह से उनको भी निर्दोष बरी कर दिया गया।
बीबीसी मराठी सेवा के मयूरेश कुन्नूर। ज्योतिर्मय डे को जेडे नाम से भी जाना जाता था। वो मुंबई के मिडडे अखबार में क्राइम रिपोर्टर थे। उनकी हत्या के बाद कई तरह की खबरें मीडिया में छपी। इनमें कहा गया कि जेडे ने छोटा राजन के खिलाफ कई खबरें छापी और छोटा राजन को उन पर दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने का शक था। बीबीसी मराठी सेवक के ही जुगल पुरोहित ज्योतिर्मय डे के साथ काम कर चुके हैं। मैंने कुछ ही देर पहले उनसे बात की और पूछा कि आप उनको कैसे याद करते हैं।
मैंने एक पत्रकार बनने से भी पहले उनसे मुलाकात की थी, सबसे पहले जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था कॉलेज में और हमारे कॉलेज में एक न्यूज़लेटर था जिसमें अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक कहानी लिखने की ज़रूरत थी। मुझे कहा गया था लिखने के लिए और क्योंकि एक स्टूडेंट की मदद कोई नहीं करता, ना कोई पुलिस वाला उसे पहचानता है, ना कोई पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर उसे एंटरटेन करता है, तो मैं एक तरीके से एक दुविधा में था कि मैं किस तरह से स्टोरी को आगे ले जाऊं।
और आप ज्योतिर्मय डे के पास गए?
मैं इसलिए गया उनके पास क्योंकि तब वो एक वीकली कॉलम लिखा करते थे जिसका नाम था नोट्स फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड और उसमें बहुत ही दिलचस्प बातें अंडरवर्ल्ड के बारे में जो एक टिपिकल रिपोर्ट में नहीं आती उनके बारे में वो लिखा करते थे। नॉमेनक्लेचर्स क्या होते हैं, नाम क्या होते हैं,
एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं,
कैसे बुलाते हैं,
कौन कौन सी ऐसी खबरें थीं जिससे कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को इतना बुरा लगा कि उनकी हत्या कर दी गई।
उनका बेस ही एक तरह से क्राइम रिपोर्टिंग था तो उनका एक टिपिकल अंदाज था जिसका मतलब ये कि वो एक रेगुलर क्राइम स्टोरीज कवर नहीं करते थे, एक स्पेशल स्टोरीज करते थे जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया। जैसे मुझे याद है उन्होंने एक मुंबई में जो ऑयल माफिया जो मुंबई के समुद्री तट पर ऑपरेट करता है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, कौन सी गैंग्स उसमें इन्वॉल्व है, उनके बारे में उन्होंने लिखा था, जो जो शायद हम लोग देखते भी नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में। तो जाहिर है इस तरह से जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो किसी ना किसी के खिलाफ एक रिपोर्ट बन जाती है, कभी कभी किसी के ऑपरेशंस खुल जाते हैं जो वो नहीं चाहते खुले। पत्रकार एक तरह से किसी का दोस्त नहीं हो सकता, जब हम कहते हैं
दुश्मन, लेकिन उन्होंने काफ़ी बना लिए, क्योंकि ये सब जो कहानियां हैं ये हम हिंदी फिल्मों में तो हम देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन वाकई कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी किसी पत्रकार की जान ले लेगा ये जिंदगी में बहुत कम होता है।
मैंने उनसे पूछा था कि आप एक जर्नलिस्ट क्यों हैं, आप कितने सक्सेसफुल जर्नलिस्ट कैसे हैं, लोग आपको ट्रस्ट क्यों करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी सैलरी है कि जिससे कि हम खबर को खरीद सके या किसी को पैसे दे के लालच दे के हम खरीद सके। तो एक जर्नलिस्ट इसी तरह से बड़ा बनता है कि अगर लोग उस पर भरोसा कर पाएँ। तो आप अपने आप को उस तरह के इंसान जर्नलिस्ट बनाइए जिस पे लोग भरोसा कर पाएँ।
आपने कभी उनसे पूछा कि ये जो अंडरवर्ल्ड की खबरें हैं ये आप लाते कहाँ से हैं, क्योंकि जब तक आप उस गिरोह के अंदर घुसेंगे नहीं तो आपको अंदर की जानकारी नहीं मिलेगी।
जी ये भी मैंने उनसे पूछा था कि एक तरह से अंडरवर्ल्ड में आपने फुट होल्ड कैसे बनाया। तो खैर कोई भी जर्नलिस्ट अपना सोर्स तो कभी डिस्क्लोज नहीं करता,
लेकिन तरीका तो बता सकता है।
जी जेड एसर ने ये बताया था कि कोई ऐसी जगह नहीं है, ना ऐसी कोई कोई स्पेसिफिक तरकीब है। हाँ लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ रहिए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनकी चीज़ें समझिए, उनमें दिलचस्पी दिखाइए। और जनरली जैसे होता है कि कई इलाके हैं मुंबई में जहाँ पर अंडरवर्ल्ड काफ़ी एक तरह से पावरफुल रहा है, कई ऐसी जगह है, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, तो या तो आप पुलिस वालों के साथ बैठिए। उनका बेसिकली एक तरह से उनकी जो लाइफ थी पूरी वो उन्होंने पूरी अपने आप को कहीं जर्नलिस्ट और एक एम्प्लॉई और नॉन एम्प्लॉयर या जर्नलिस्ट एंड नॉर्मल ह्यूमन बींग वो डिवीजन कहीं रखा ही नहीं।
ये थे बीबीसी मराठी सेवा के जुगल पुरोहित।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एम जोसेफ की तरक्की की फाइल पर फैसले को टाल दिया है। जस्टिस जोसेफ फिलहाल उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के समूह यानी कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ के साथ वकील यानी वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को तो स्वीकार कर लिया पर के एम जोसेफ के नाम की फाइल को वापस कॉलेजियम भेज दिया। इससे केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच का मतविरोध जगजाहिर हो गया। इस मामले पर हमारे संवाददाता सलमान रावी नजर रखे हुए थे, ये प्रस्तुत है उनकी ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के एम जोसेफ की नियुक्ति के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और सरकार के बीच पैदा हो रहे विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है। बुधवार को कॉलेजियम की बैठक बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा चार और जज शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट में रिक्त और भी जजों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। इसमें क्षेत्रीय संतुलन पर भी बात की गई, मसलन कोलकाता, राजस्थान और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों से भी जजों की नियुक्ति को लेकर बात की गई। मगर कॉलेजियम की बैठक से ठीक पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया।
Respect for the institution of judiciary and the judges.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है। वो ये भी कह रहे थे कि जस्टिस कुरियन के नाम पर पुनर्विचार का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को दिया है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि सरकार ने जस्टिस कुरियन के नाम पर पुनर्विचार करने के लिए कॉलेजियम को इसलिए नहीं कहा था कि उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को खत्म कर कांग्रेस की सरकार को बहाल किया था। वहीं न्यायपालिका और सरकार के बीच की तनातनी को लेकर कई कानूनविदों और पूर्व न्यायाधीशों ने चिंता जताई है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एल लोधा ने भी एक किताब के विमोचन के समारोह में बोलते हुए इस पर चिंता जताई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लोधा कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच के संबंध काफी खराब हो गए हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कॉलेजियम की गरिमा को बनाए रखने के लिए एकजुट होना जरूरी है, भले ही उनके मत अलग क्यों ना हो। हालांकि सरकार ने जस्टिस जोसेफ के मामले में कॉलेजियम को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वरीयता के मामले में जस्टिस जोसेफ 42वें नंबर पर हैं, जबकि उनसे वरीयता प्राप्त जज भी मौजूद हैं। अब कॉलेजियम की अगली बैठक कब होगी इसको लेकर अभी किसी तरह की चर्चा नहीं की गई। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस से जवाब तलब किया है कि उनके रहते हुए हमलावर फरार कैसे हो गया। सहायक टाउन प्लानर शैल बाला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण गिरवाने पहुंची थी कि विजय ठाकुर नाम के आदमी ने उन पर कथित रूप से गोली चला दी। सोलन से स्थानीय पत्रकार पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा ने बीबीसी को बताया कि एक स्पेशल टीम बनाकर फरार अभियुक्त को जोर शोर से तलाश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले के लिए 1,00,000 रुपए की घोषणा भी की है।
इस इंसिडेंट में जो अभियुक्त है वो अभी फरार चल रहा है और उसको बहुत सारी हमने टीम्स बनाई हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, बॉर्डर में भी सील किया था, तो जंगलों से वो पैदल भागा है, तो उसका ट्रैक कर रहे हैं और विशेष टीम गठित करके उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
शैल बाला का पोस्टमार्टम शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में किया गया। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जनक राज ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पूरी रिपोर्ट पुलिस को और मृतका का शरीर घर वालों को सौंप दिया गया है।
उस डेड बॉडी को हमारे पास सुबह सोलन से पुलिस पर्सनल लेके आए थे, तो जो लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज थी उसकी, जैसे एक्सरे होना है, पैलेट ढूंढने के लिए ICT स्कैन होना है, वो सब करवाने के बाद हमने इनको फॉरेंसिक विभाग को निर्देश दिए थे कि इनका जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करके बॉडी को हैंड ओवर वापस कर दी जाए। तो जो अभी इस वक्त मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है।
शैल बाला के भाई मदन कांत शर्मा ने कहा कि उनकी बहन ने फर्ज के लिए अपनी जान दी है।
जिनकी मौत हुई वो अपना कर्तव्य उच्चतम न्यायालय के आदेश से विभागीय निर्देशों के अनुसार अपना जो कर्तव्य है वो पूरी निष्ठा से निभा रही थी। मेरी तो छोटी बहन थी सरकारी ड्यूटी के दौरान, और कोई फायर करके किसी अधिकारी कर्मचारी को जान से खत्म कर दे तो संभवतः ये हिमाचल के इतिहास में पहली घटना है।
ये घटना मंगलवार को करीब 2:30 बजे की है। अवैध कब्जों को हटाने के लिए सहायक नियोजक अधिकारी शैल बाला के नेतृत्व में एक टीम सोलन जिला के मंडोधार में नारायणी गेस्ट हाउस पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक होटल मालिक के बेटे विजय ठाकुर ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच महिला अधिकारी शैल बाला से उनकी बहस हुई और आरोपी ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां दाग दी। इसमें शैल बाला की मौके पे मौत हो गई और दूसरी गोली लगने से लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी गुलाब सिंह घायल हो गए। आरोपी विजय खुद शिमला में बिजली बोर्ड में कार्यरत है। इस घटना के बाद आरोपी मौका वारदात से फरार हो गया। पंकज शर्मा, सोलन, हिमाचल प्रदेश, बीबीसी के लिए।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। जैसा कि आपने सुना, मैं हूं राजेश जोशी। और अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। अफ्रीकी महाद्वीप के नक्शे पर सुदूर दक्षिण में एक बिंदु की तरह नजर आने वाला स्वाजीलैंड अफ्रीका का एक दिलचस्प मुल्क है। वहां राजतंत्र है और वो भी ऐसा कि राजा देश का नाम भी बदल सकते हैं। स्वाजीलैंड का नाम बदलकर अब द किंगडम ऑफ इस्वातिनी कर दिया गया है। आज दुनिया जहान में संदीप सोनी इसी मुल्क की चर्चा कर रहे हैं।
दुनिया जहान। अफ्रीका में पूरी तरह से राजतंत्र वाले इस देश ने हाल ही में अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मनाई है। लगभग 13,00,000 की आबादी वाले राजा रानी के इस देश में बीते 50 साल में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। हालांकि लोकतंत्र के समर्थन में आवाजें उठती रहती हैं। लोकतंत्र के समर्थकों का आरोप है कि देश की माली हालत खराब है, लेकिन फिर भी राजा शाही अंदाज में रहते हैं। राजा का नाम है मस्वाती, देश का नाम स्वाजीलैंड और अब नाम बदल कर दिया गया द किंगडम ऑफ इस्वातिनी। इस देश की एक संसद भी है लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों पर पूरी तरह से पाबंदी है। जो इस पाबंदी को नहीं मानते उन पर राजद्रोह की तलवार लटकती रहती है।
मुझे अपनी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से ही जेल की हवा खानी पड़ती है। मुझे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में रहना और जेल के बाहर रहने में कोई फर्क महसूस नहीं होता। मैं यहाँ उतना ही आजाद हूँ जितना पिंजड़े में बंद कोई परिंदा।
मारिया मसूगो द पीपल्स यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेता हैं। वे चाहते हैं कि उनके देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सही मायने में लोकतंत्र तक पहुंचा जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी देशों के जानकार प्रोफेसर सुरेश कुमार कुछ वर्ष पहले स्वाजीलैंड गए थे। वे बताते हैं,
अगर आप मैप पे भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ अफ्रीका की ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल और भूटान है। नेपाल और भूटान दो देश हैं, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में लिसोथो और स्वाजीलैंड है। स्वाजीलैंड में मोनार्की सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज भी थी लेकिन उसको बैन कर दिया गया है। किंग ही है जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों को वो ही देखते हैं। आज राजतंत्र के अंदर भी मैं इसमें एक ही परिवर्तन देख रहा हूँ। देश के नाम को बदल कर इस्वातिनी रख रहे हैं। इस विषय पे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो पाएंगे कि इसका जो आर्गुमेंट है वो ये देते हैं कि जो अलग अलग उपनिवेशिक ताकतें थी अफ्रीका के अंदर, जैसे जैसे वो उस देश से गई हैं, कई देशों ने अपने अपने देशों के नाम बदले हैं। उसमें जो है जिम्बाब्वे का भी एग्जाम्पल लिया जाता है, मालावी का भी है, बोत्सवाना का भी है और दूसरे देश। इसी तर्ज पे ही इस्वातिनी जो नया नाम रखा है स्वाजीलैंड का, वो इसी तर्ज पे ही रखा गया है।
द किंगडम ऑफ इस्वातिनी में राजतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हैं? क्यों अफ्रीका के इस हिस्से में लोकतंत्र की बयार नहीं बही? इस सवाल पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफ्रीकी मामलों के जानकार प्रोफेसर अजय दुबे कहते हैं,
यह एक बहुत छोटा सा मुल्क है, इसमें एक ट्राइब का शुरू से डोमिनेंस रहा है। कॉलोनियल पावर्स उन्होंने भी इस किंगडम को डिस्टर्ब ज्यादा नहीं किया और शुरू से इनको एक ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रखा गया और इनको एक सुजरेन अथॉरिटी के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए इनका हिस्टोरिकली जो राजतंत्र है वो ट्राइबल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और उन्हीं रीति रिवाजों से, उन्हीं परंपराओं से शुरू से चलता आ रहा है। इसी की वजह है कि वहाँ के लोग अभी इसमें विश्वास रखते हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ के राजा के खिलाफ भी कोई बहुत ज्यादा कोई आंदोलन हुआ हो या उनपे कोई चार्जेस लगे हों, तो ऐसी स्थिति नहीं आने की वजह से अभी भी वहाँ पे पुराना राजतंत्र जो कि ट्राइबल स्ट्रक्चर के अंदर चलता है अभी भी मौजूद है वहाँ पे।
ये वही जगह है जहाँ लगभग 125 साल पहले ब्रिटेन और बोअर रिपब्लिक ऑफ ट्रांसवाल मिलकर शासन करते थे। इसके बाद वर्ष 1921 में राजा शोभुजा का शासन शुरू हुआ, जिन्होंने 82 वर्ष तक शासन किया। राजा शोभुजा के बारे में कहा जाता है कि उनकी 125 रानियां थीं। उन्हीं के बेटे मस्वाती इस समय राजा हैं, जिन्हें लोग शेर कहकर बुलाते हैं। वे अब तक कम से कम 13 महिलाओं को अपनी रानी बना चुके हैं। कुछ और रोचक बातें प्रोफेसर अजय दुबे की जुबानी।
एक खास परंपरा वहाँ की जो पूरे अफ्रीका में चर्चित है और विश्व में चर्चित है वो है रीड डांस का, जिसमें हर साल राजा जो है एक रानी को चुनता है और उसमें पूरे स्वाजीलैंड से लड़कियां जो कि वर्जिन होती हैं चुनी जाती हैं, फिर डांसेज होते हैं, उनके सिलेक्शंस होते हैं डिफरेंट स्टेजेस के और राजा फाइनली एक स्टेज पे उनको चूज करता है और वो सारे उनके अपर पोर्शन नंगे बदन रहते हैं और ये बहुत ही अजूबा और ऐसा लगता है कि आज के सभ्यता के हिसाब से गलत है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर है और पूरी जनता और अगल बगल के लोग भी उसको देखने के लिए आते हैं।
यूनिसेफ के मुताबिक इस देश में HIV एड्स का खतरा सबसे ज़्यादा है। एड्स की वजह से यहाँ इतने अधिक लोगों की मौत हो चुकी है कि हजारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। प्रोफेसर सुरेश कुमार बताते हैं,
स्वाजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट है और दोनों देशों के एग्रीमेंट के तहत दोनों देश की करेंसी जो है दोनों देशों की एक है। नंबर दो, स्वाजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका का मोर देन 70% जो है पानी की निर्भरता को पूरी करता है।
क्या आप जानते हैं द किंगडम ऑफ इस्वातिनी यानी पुराने स्वाजीलैंड के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं?
योर एक्सलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी।
राजा मस्वाती इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के लिए वर्ष 2015 में भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। इसी साल भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी स्वाजीलैंड की यात्रा पर गए थे।
भारत और स्वाजीलैंड के बीच में जो संबंधों की बात की जाए तो आज शिक्षा के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ये तीन सेक्टर है जहाँ पे भारत अपनी रुचि दिखा रहा है।
द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक द किंगडम ऑफ इस्वातिनी के राजा मस्वाती को एक दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि वो जब जब अपने देश से बाहर जाते थे लोग स्वाजीलैंड को स्विट्जरलैंड समझ लेते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि ब्रिटेन से आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर अपने देश का नाम ही बदल देंगे। नाम बदलने की खबर आने के बाद दुनिया भर के अखबारों में खबर के साथ इस बारे में काफी चर्चा हुई कि क्या नाम बदलने से वहां रहने वाले आम लोगों की जिंदगी में भी कोई परिवर्तन आएगा। शायद इसका जवाब भविष्य में मिले।
ये प्रस्तुति संदीप सोनी की, आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम अब से कुछ ही देर बाद फिरोजशाह कोटला मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सामना करेगी। दोनों टीमें इस सत्र में दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले राजस्थान ने दिल्ली को डकवर्थ लुइस मेथड से 10 रन से मात दी थी। इस मैच से दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पिछली हार का बदला लेने के साथ अपनी टीम को घरेलू मैदान पर जीत की पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। 8 मैचों के बाद 6 हार झेल चुकी दिल्ली फिलहाल पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। इस टीम का नॉकआउट में पहुंचने का रास्ता मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं राजस्थान की टीम भी उतार चढ़ाव से गुजर रही है, जिसने अपने पिछले मैच में घरेलू मैदान पर करीबी हार झेली। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली राजस्थान फिलहाल टूर्नामेंट में 6 नंबर पर है। उसने अपने 7 मैचों में 4 हारे हैं, जबकि 3 में जीत हासिल की है। राजस्थान कमजोर दिल्ली के खिलाफ जीत के साथ पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए उसके बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर करना होगा। राजस्थान पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से 11 रन से हार गई थी, जिसका इस मैच पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन कहते हैं,
कॉन्फिडेंस पे असर पड़ेगा, उनके पॉइंट्स पे तो असर पड़ ही गया, क्योंकि ये मैच उन्हें जीतना चाहिए था, खास करके अगर घर पे घरेलू मैच थी। एक वक्त तो ऐसा लगा कि आसानी से जीत जाएगी राजस्थान, लेकिन वो हुआ नहीं। बहुत एक निराशजनक परफॉर्मेंस जो रहा है वो है बेन स्टोक्स का। पिछले मैच में भी उन्होंने 0 बनाया और वो बिल्कुल यहाँ पर चल नहीं पाया, ना बैट से ना बॉल से।
और अब बात हॉकी की। अनुभवी डिफेंडर सुनीता लाकड़ा को 13 मई से कोरिया के डोंगहाई सिटी में होने वाले एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट के लिए डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। नियमित कप्तान रानी रामपाल की गैर मौजूदगी में सुनीता 18 सदस्यों की टीम की कप्तान होंगी। भारत ने 2016 में चीन को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इस बार भारत 13 मई को जापान के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब अंत में मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त छोटा राजन समेत सभी 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में चुनाव आयोग को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। इसे फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की अभिमन्यु साहा ने। मैं राजेश जोशी अब अपने सभी साथियों की ओर से आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।